शुरा के बाद सूरह ज़ुख़रुफ़ है, बनाओ सजावट 89 आयात हैं, 43 नंबर की सूरत है। रब्त क्या है कि सूरत ज़ुख़रुफ़ आदा इल्लाही के लफ्ज़ की बजाय, यानी अल्लाह की बजाय अपने आप को हाकिम आला समझने वालों के तस्करों से भरी हुई है, यानी फिरौन और उसके कारिंदे, यानी ज़मीन में फिरौनी रवैये अख्तियार करने वालों की बात है। इसमें ज़ालिका का लफ्ज़ 3 दफ़ा आता है, यानी पिछले अंबिया की नबूवत का सिलसिला है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर हम मजीद चीज़ें देखेंगे, इसके साथ साथ आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रुकू नंबर 1 आयत 1-15, खालिके कायनात की कुदरत का बयान। हा मीम, और या नोट कर लीजिए, हवा मीम के सिलसिले की ये अगली सूरत है। वल किताबिल मुबीन, हा मीम, कसम है इस वाज़ेह किताब की, हमने इसको अरबी जुबान का कुरान बनाया है कि तुम समझ लो, यकीनन ये लोहे महफूज में है और हमारे नज़दीक बुलंद मर्तबा हिकमत वाली है। क्या हम इस नसीहत को तुमसे इस बिना पर हटा लें कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। हाईलाइट करिए, ये आज का मुतालबा, बंद करो इस कुरान के सिलसिले को। मक्का वाले भी कहते थे कि इस वही के सिलसिले को रोक दो, अल्लाह करे सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ट्रांसग्रेसिव होना है, तुमने हदों से गुजरना है, तुम कुछ ज्यादा ही मस्तियां करना चाह रहे हो। ये बिल्कुल पता है कैसी बात है कि गवर्नमेंट कहे कि अच्छा तुम ओवर स्पीडिंग करना चाह रहे हो ना, तो फिर हम स्पीड लिमिट रोक लेते हैं, फिर हम रेड लाइट पे रुकना छोड़ देते हैं, स्टॉप साइन के सारे साइन निकाल दें, कितने हद से होंगे। लिखिए, ये वही इलाही का सिलसिला है जिसने इंसानियत को हादसात से बचाया हुआ है। आज जितने घर टूट रहे हैं ना, ये हद से हैं, क्योंकि हमने अल्लाह के दिए हुए इस निज़ाम को नहीं लिया जो खानदान का सिलसिला था। और इसी तरह हम जहाँ भी परेशान हैं, जहाँ भी अपसेट हैं, उसके पीछे एक चीज़ वाज़े है कि हमने अल्लाह के इस कलाम के अहकामात को अमल में नहीं रखा। सोचिए हजरा, कभी ये कुरान पहले पता होता तो हम अपने बच्चों की तरबियत वैसे ही करते जैसे की, मानना पड़ेगा हमें। और अब कुरान पढ़ने के बाद जो बच्चे आ रहे हैं, क्या उनकी हमें जो फिक्र लग गई है, ये इस कुरान के पढ़े बगैर होनी थी? तो कुरान जिंदगी से जब निकलता है, ये वही इलाही का सिलसिला निकल जाता है, तो उसके बाद याद रखिए कि हम हदों से ही गुजर जाते हैं। वो कहते हैं ना, हद की भी हद हो गई है। आज उम्मत मुस्लिमा पे तो यही जुमला फिट होता है। और हमने अगले लोगों में भी कितने ही नबी भेजे, जो नबी इनके पास आया उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, बस हमने इनसे ज्यादा जोरावरों को तबाह कर डाला, और अगलों की मिसाल गुजर चुकी है। यानी पिछले लोगों से लेके अगले, हर एक की एक ही आदत है। अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, तो यकीनन इनका जवाब यही होगा कि इन्हें गालिबो दाना अल्लाह ही ने पैदा किया, वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और बिछौना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते कर दिए ताकि तुम राह पा लिया करो। इसी ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल किया, बस हमने इस मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, और इसी तरह से तुम निकाले जाओगे। सोचिए जरा, जिसने तमाम चीजों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियां बनाई और चौपाए जानवर पैदा किए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम इनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो, फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब इस पर ठीक ठाक बैठ जाओ और कहो, पाक जात है उसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हम में इसे काबू करने की ताकत ना थी, और बिल यकीन अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। कौन सी दुआ आ गई? सवारी की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। क्या खूबसूरत हो। आप देखिए कि आज तो गाड़ियां हैं ना, और भी बड़ी बड़ी चीजें इससे भी बढ़ के आगे आएंगी। पहले दौर में घोड़ा, और इसी तरह से वो जानवर जैसे ऊंट है, उसमें कीना बहुत होता है, घोड़ा बहुत तेज जानवर है, गधा बेवकूफ होता है, कैसे बंदा उसके ऊपर चढ़ के सवार होता है? हमारे ऊपर कोई पाँव भी रख दे तो हम चीख पड़ेंगे। अल्लाह ने मुसख्खर किया। और आज मुझे ये दुआ आयत याद आती है, जब मैं शोहरों को गाड़ियों में बैठा इंतजार करता देखती, फिर मैं कहती हूँ, अल्लाह ने सिर्फ गाड़ियां ही नहीं मुसख्खर की, अपने बंदे भी मुसख्खर कर दिए। पाँव पट गए, जो मर्जी करे वो छोड़ के नहीं आपको जाएंगे, ये उनको भी पता है, आपको भी पता है, इसीलिए आपको बस 5 मिनट में आई नहीं, बस 5 मिनट और। वो बंदे क्या करें बेचारे, तो वो भी मुसखर शुदा ही कौम में है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। फिर कहेंगे हाँ फिर हमें गाड़ी क्यों नहीं दिलाते, अल्लाह हमें हिदायत दे। चलिए, और उन्होंने अल्लाह के पास बंदों को इसका जुज ठहरा दिया, यकीनन इंसान खुला न शुक्रा है। फेथ इन एक्शन, लोगों की मुफाद परस्ती और हट धर्मी देख कर दर्स नसीहत रोकना नहीं है। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह को पाने के लिए इसकी अता करदा नेमतों पे गौर व फिक्र करना है, नेमतें पाकर इनकी नाशुक्री से बचना है। अल्लाह हमें नेमतों की कदर की तौफीक दे। आगे आ गया जी आपके और मेरे औरतों से मुतल्लिक रुकू, रुकू नंबर 2, 16 से 25। औरत सिन्फे नाजुक है। अमित तखस मिम्मा यखलुकु बनातें व अस्फाकुम बिल बनीन। क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख ली और तुम्हें बेटों से नवाजा, हालांकि इनमें से किसी को जब किसी चीज की खबर दी जाए जिसकी मिसाल इसने अल्लाह रहमान के लिए बयान की है, तो इसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गमगीन हो जाता है। क्या अल्लाह की औलाद लड़कियां हैं जो जेवरात में पलें और लड़ाई झगड़े में अपनी बात वाजह करके भी बयान न कर सकें? और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान के इबादत गुजार हैं औरतें करार दे दिया, यानी कि फरिश्ते फेमिनिन होते हैं। क्या इनकी पैदाइश के मौके पर ये मौजूद थे, यानी इन्होंने देखा था कि इनकी जेंडर क्या है? नाउसुबिल्ला, इनकी ये गवाही लिख ली जाएगी और इनसे इस चीज की बासपुरस की जाएगी, और कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत ना करते। यानी इसकी कुछ खबर नहीं, ये सिर्फ अटकल पच्चू झूठ बातें कहते हैं। क्या हमने इन्हें इससे पहले कोई और किताब दी है जिसे ये मजबूत थामे हुए हैं? नहीं, बल्कि वो तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक मजहब पर पाया और हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर राह याफ्ता हैं। इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहां के आसुदा खाल, इसको नोट कीजिएगा, यानी खाते पीते लोग, उन्होंने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर और एक दीन पर पाया और हम तो इन्हीं के नक्शे पाक की पैरवी करने वाले हैं। इस आयत को नोट कीजिएगा। नबी ने कहा भी कि अगरचे मैं तुम्हारे पास इससे बहुत बेहतर मकसूद तक पहुंचने वाला तरीका लेकर आया हूँ जिस पर तुमने अपने बाप दादाओं को पाया, तो उन्होंने जवाब दिया हम इसके मुनकिर हैं जिसे देकर तुम्हें भेजा गया है, बस हमने इनसे इंतकाम लिया और देख ले कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिए कि ये सारा कुछ जो आपके मेरे सामने है, इस पे गौर व फिक्र करते हुए जरा सा इस पारे के नाम जोहरब और इसमें औरतों से मुतल्लिक बातों पे कि बेटी की पैदाइश पे लोग कितना दुखी महसूस करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत वाकया इमाम तबरानी ने पेश किया है, और ये वाकया है हजरत सौसा बिन नाजिया का। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मुझे कलमा पढ़ा दें। मुसलमान होने के बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, दौरे जाहिलियत में हमने जो नेकियां की हैं क्या इनका भी हमें अल्लाह अजर अता करेगा? अल्लाह के नबी ने पूछा तूने क्या नेकी की है? कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मेरे दो ऊंट गुम हो गए थे, मैं तीसरे ऊंट पर बैठकर अपने उन दो ऊंटों को ढूंढने निकला। वहां मैंने अपने दो ऊंट एक बूढ़े के पास पा लिए, यानी एक बूढ़ा शख्स था उसके पास मेरे दोनों ऊंट खड़े थे। मैंने वहीं एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। बूढ़ा पूछने लगा कि बताओ क्या हुआ? यानी ये सहाबी कहते हैं कि मेरे ऊंट जब उस बूढ़े के पास से मुझे मिले तो मैंने उसको बोला कि ये तो मेरे ऊंट है, तो उसने कहा मैंने तो नहीं लिए, ये तो खुद ही चलते चलते मेरे पास आ गए। कहते हैं कि अभी मैं उसके साथ ये बातें कर ही रहा था ना, तो मुझे उस बूढ़े की आवाज आई जिसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, कहने लगा कि बेटा आया कि बेटी? तो इसने पूछा कि खैरियत है क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरे घर बच्चा होने वाला है। कहा तुमने ये क्यों पूछा है कि बेटा या बेटी? कहने लगा बेटा होगा तो मुझे इज्जत देगा, मेरे खानदान का नाम बड़ा करेगा। हाँ अगर बेटी हुई तो मैं तो उसको फौरन जिंदा दफन कर दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे दरवाजे पे दामाद को ले आएगी। अरबों का एक पूरा कह लीजिए कि ग्रुप जो था वो सिर्फ इसलिए बेटियों को पसंद नहीं करता था कि उससे दामाद के दबाव में आना पड़ता। खैर ये कहते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी तो मैं एकदम हैरान हो गया। खैर थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई तो मैंने उस बूढ़े से पूछा कि पता तो करो कि क्या हुआ। बूढ़े ने जब आवाज दे के पूछा तो उसने कहा कि बेटी हुई है। इन्होंने कहा कि अब तुम इसके साथ क्या करोगे, तो कहने लगा कि मैं इसको दफन कर दूंगा क्योंकि मैं बेटी की पैदाइश की मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत सासा कहते हैं कि मैंने उस बूढ़े को कहा कि तुम मेरे ये दोनों ऊँट ले लो और मुझे अपनी बच्ची दे दो, उसको मारो नहीं। कहने का दो नहीं लूंगा, ये तीसरा भी लूंगा जिस पे तुम बैठ कर आए हो। अच्छा तुम ऐसा करो कि मेरे साथ किसी को भेजो, वो मुझे मेरे मुल्क छोड़ दे मेरी जगह पे, तो ये वापसी पे ये तीसरा भी ले ले। उसने सौदा कर लिया। कहते हैं कि घर लाया, मैंने अपनी कनीज को कहा कि इस बच्ची को दूध पिलाओ, इसकी टेक केयर करो। वो तीन ऊंट देने के बाद जो मैंने उस बच्ची को अपने पास पाया, मुझे उससे जो खुशी मिली, वो बच्ची मेरे घर में पलने लगी। कहते हैं वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती, मेरे सीने पे लगती, कि मुझे उस नेकी की खुशी पाने के लिए चस्का लग गया। अब मेरा काम क्या था कि मैं ढूंढने लगा कि किस घर में बच्चा पैदा होने वाला है, मैं वहां जाता। उन्होंने कहता कि देखो अगर तुम्हारी बेटी हुई ना तो मैं उसको ले लूंगा, ताकि पूरे शहर में ये बात फैल गई कि तीन ऊंटों की कीमत पे एक बच्ची बिकती है। और इन्होंने 360 बच्चियों की जान बचाई। कहने लगे कि मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती हैं, अल्लाह के नबी मुझे बताएं मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा। कहते हैं कि ये बात सुनने के दौरान नबी सल्लम का रंग बदल गया, आपकी दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिरने लगे, मुझे सीने से लगाया, मेरा माथा चूमा और कहने लगे अब ये जुमला आप लिख लें, ये आपके मेरे लिए। कहने लगे ये तो तुझे अजर ही तो मिला है कि अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत अदा की। यहाँ से पता चलता है कि एक नेकी दूसरी नेकी को बुलाती है, एक नेकी के बाद दूसरी नेकी मिलती है, यानी अल्लाह ने उनकी उस छोटी सी नेकी को ईमान में ढाल दिया। ये तो ऐसे कि रोल गोल्ड लेकर कोई आपको सुचा सोना दे दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तेरा दुनिया का अजर है और तेरे रसूल का वादा है कि क्यामत के दिन रब्बे करीम तुम्हें खजाने खोल कर देगा। अब आप अपने ऊपर लेकर सोचें, अगर आपकी पैदाइश पे कोई आपको मार देता तो कभी भी बेटी को बुरा ना कहे, बेटी की पैदाइश पे दिल मैला ना करें। हमारे कल्चर में भी बेटियों को बस एक दर्जा नीचे तो जरूरी रखते हैं, यानी अगर बेटे की पैदाइश की खुशी 51% है ना, तो बेटी की 49 है। या ये कि कुछ 4-6 बेटे हो जाएं तो टेस्ट चेंज करने के लिए कोई एक और बेटी हो जाए। तो याद रखिए कि वो कहते हैं ना कि वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रौनक। आप और मैं, हम औरतें हैं और औरत होने के नाते हमें इस दुनिया में अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। इसमें दो बातें आई हैं औरतों की, चूंकि सूरह ज़ुख़रुफ़ का नाम भी इसी पे ही है। एक तो क्या कहा कि ये जेवरात में पलती है, और दूसरा ये कहा कि झगड़े के वक्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बयान कर सकती। तो औरत तराश पसंद भी होती है और कभी मुकाबलेबाजी हो तो पुरजोर अंदाज में कलाम नहीं करती। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने मर्द को बाहर के कामों का जिम्मेदार और औरत को अंदरूनी कामों की जिम्मेदारी दी है। आपको मुझे सबसे ज्यादा जो फिक्र होनी चाहिए वो क्या है कि आप शोपीस नहीं है। अरबों ने औरत को एक शोपीस बनाया हुआ था, तभी तो कहा बला तबरुच न तबरुजुल जाहिलियत लूला, सूरत अलहज़ाब में हम पढ़ कर आए हैं 23वें पारे में। तो औरत का मुकाम स्टैचू बनना नहीं है। आप पूरे कुरान में कितनी औरतों का तذکرہ पढ़ कर आए हैं, उम्मे मूसा, उख्ते मूसा, फिरौन की बीवी का, हजरत मरियम का, मरियम की माँ का, हजरत आयशा का। 6 तो मैंने बोल दिया और आगे आप बाकी गिन लीजिएगा अम्बिया कराम और उनके नाते से भी। कभी किसी की ब्यूटी की बात हुई है? ये जो आज ऑब्सेशन हो गया ना खूबसूरती का, कि औरतों ने चैनल्स बना लिए, औरतों ने अपने ब्लॉग बना लिए, ब्यूटी टिप्स हैं, और अपना जिस्म खोल खोल कर उसको खोल कर दिखाना कि ये कर लें तो इतने दुबले, ये कर ले तो उतने, ये पसंदीदा नहीं है। औरत को अल्लाह ने घर के अंदर रख कर ना, वही जो मैंने बात आप पीछे सुनाई है ना कि औरत का असल काम जो है ना उसका घर के अंदर है। वहां रहकर वो कमा भी सकती है, वहां रहकर वो खिला भी सकती है, लेकिन आज भी देखिए हर एडवर्टाइजमेंट में औरत, हर बिलबोर्ड की जीनत औरत, पूरे पूरे 6-6 फ्लोर होते हैं बिल्डिंगों के और उसके ऊपर एक औरत खड़ी होती है, सरों पे मुसल्लत कर दी। औरत का ये मुकाम नहीं था। दूसरी बात है कि अल्लाह ने औरत के जेवर पहनने की बात की तो ये कोई गुनाह नहीं है। आज जितना हमारे यहाँ निस्वानियत यानी फेमिनिज्म खत्म होके लड़कपन के साथ बता दिया, पहले तो कोई बड़े होके कोई औरत पैंट शर्ट पहनती थी तो कहते थे मर्दों वाली बनती है, आज बच्चियां, आज वो खूबसूरत फ्रॉकें नहीं रही, आज उनके हिजाब नहीं रहे, उनकी टांगे कटी हुई हैं पजामों की, उनके बाजू खाली हैं। लड़का और लड़की की सारी तरबियत में हमारा एक ही अंदाज है, तो आप नानियों को और दादियों को और माओ को और बापों को अपनी बच्चियों को बच्ची बना के पालना। आज हम बच्चियों की तरबियत भी नहीं कुछ ऐसी कर रहे कि उनके अंदर वो नरमी और वो गुदाज आए कि वो जो टूटे को जोड़ सके। दो सख्त चीजों के बीच में एल्फी लगती है ना, नरम होती है तो ही वो चीज छोड़ती है। तो बहरहाल अल्लाह ने औरतों की यहाँ साइड ली है। फिर एक और चीज इसमें आई है कि अल्लाह के दिए हुए दीन के मुकाबले में हर दौर में जो सबसे बड़ा बुत लोगों ने पेश किया ना, वो आबा परस्ती है, आबाई दीन, खानदानी दीन। यहाँ भी वो हड़दर थी। आज भी बहुत काम कुरान पढ़ने के बाद आपको बेकार लगेंगे जो हम करते थे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे लोग वो रस्में, वो फरसुदा चीजें। वो क्यों? क्योंकि हमारे बड़े भी यही करते थे। तो अमल के नुक्ते क्या है कि बेटी की नेमत पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना, औलाद की अच्छी तरबियत करके जन्नत का हकदार बनना, और अपने अबाउजदाद की रस्मों की अंधी तकलीद नहीं करनी। और ये बुत तोड़ना सबसे मुश्किल है। अल्लाह हमें इस ईमान की वो ताकत दे कि रस्म और रिवाज के और गंदे और बेपर्दगी के बुत तोड़ सकें। एटलीस्ट अपनी खुशियों को तो हम पाक करें। आगे है रुकू नंबर 3, 26 से 35। दुनिया का माल और जर सिर्फ मताए कलील है। बार बार आप ये मजमून इस बारे में देख रहे हैं क्योंकि वही इलाही का खुलासा ये था कि दुनिया 4 दिन की और आखिरत हमेशा की। और इब्राहिम का तस्करा आ रहा है, वो इस काल इब्राहिम उली अभी ही व कौमी ही इन्नी बरा मिम्मा ताबुदून। और जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से और अपनी कौम से फरमाया कि मैं इन चीजों से बेजार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, सिवाय उस जात के जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत भी करेगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी को अपनी औलाद में बाकी रहने वाली बात कायम कर गए ताकि लोग शिर्क से बाज आते रहें। बल्कि मैंने इन लोगों को और इनके बाप दादों को सामान और असबाब दिया, यहाँ तक इनके पास हक और साफ साफ सुनाने वाला रसूल आ गया, और हक के पहुंचते ही ये बोल उठे कि ये जादू है और हम इसके मुनकिर हैं। ये किस को कह रहे थे जादू? वही इलाही को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी मुखालफत इसी वजह से थी। और कहने लगे, ये कुरान इन दोनों बस्तियों में यानी मक्का और ताइफ किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल नहीं किया गया? जाहिर प्रस्त है ना, कहते थे ये यतीम है मक्का नबी बन गया, ये क्या बात है? कोई बड़ा होता, कोई जो उनके बड़े बड़े सरदार उस वक्त में ताइफ में रहते थे, जैसे आज भी कोई रिसोर्ट हो या कोई शिमाली इलाकों में कोई सवात और इसी तरह से ऊंची जगहों पे किसी का बहुत ही खूबसूरत घर हो, तो उन्होंने नबी को मादी पैमानों में तोलना चाहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके रब की रहमत को ये तकसीम करते हैं, हमने ही इनकी जिंदगानी है दुनिया की रोजी में तकसीम की है और एक को दूसरे से बुलंद किया है ताकि एक दूसरे को मातहत कर लें। ये हाईलाइट करें, जुमला पीछे गुजर गया, कि सबको दौलत एक जैसी ना मिलने की वजह यह है कि अमीर लोग कम अमीर लोगों को हायर करें और उनसे काम ले लें, और वो भी खुशी से करेंगे जब उनके पास नहीं होगा, जिससे ये लोग समेटते फिरते हैं, इससे आपके रब की रहमत ही बेहतर है। तीसरा मुकाम है गालिबन जहाँ दुनिया की दौलत को जमा करके रखने की बजाय अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की दावत है। और अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाएंगे तो रहमान के साथ कुफर करने वालों के घरों की छतों को हम चांदी की बना देते। लाइए तसव्वुर में घर है पूरे अटलांटा में कोई ऐसा घर जिसकी छतें चांदी की हों, और जीनों को यानी सीढ़ियों को भी जिन पर चढ़ा करते, और इनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगा लगा कर बैठते, और सोने के भी। और ये सब कुछ यूं ही सा दुनिया की जिंदगी का फायदा है, आखिरत तो आपके रब के नजदीक सिर्फ परहेजगारों के लिए ही है। मट्टी और चूने के घरों के लिए आज लोग अपना ईमान जाया कर देते हैं। जरा सोचिए, आपका घर मट्टी का और आपके नेबर गैर मुस्लिम, उनका घर सोने का, इधर वाले का चांदी का, तो कितने को ईमान पे रहते हैं। घर बंदे की कमजोरी बन जाता है जब उसको दुनिया की असल नहीं समझ आती। तो फेथ इन एक्शन क्या है कि मुआशी हैसियत में फर्क अल्लाह की हिकमत है जिसके जरिए से एक इंसान दूसरे से खिदमत ले सकता है, इसलिए हमें इस पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, यह हकीकत है बस। दुनिया का मालो मता आखरत की दौलत के मुकाबले में कुछ भी नहीं, यानी दुनिया के पैसे डी वैल्यू हो जाएंगे। कुछ नोट डिवेल्यूएशन पे आ जाते हैं ना, कोई नोट चेंज होता है, कहते हैं अब यूज नहीं होगा, एक खास अरसे तक उसको इस्तेमाल कर लीजिए, अदरवाइज बाद में इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इस दुनिया के माल की वैल्यू मेरी आपकी सांस के चलने तक है सिर्फ, और उससे भी पहले हो सकता है कि अल्लाह ताला हमसे उसके इख्तियारात ले ले। अल्लाह ताला हमें अपने माल, अपने वक्त, अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी हर नेमत को सही तरीके से इस्तेमाल करने की हिकमत अता फरमाए। आगे देखिए रुकू नंबर 4, 36 से 45, शैतान का मुसल्लत होना, बहुत ही जबरदस्त आयते हैं। वमैयाशुअन जिक्र रहमान ही नुकैत लहु शैताना, और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे, हम इस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही इसका साथी रहता है और वो इन्हें राह से रोकते हैं, और ये इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हिदायत याफ्ता है, यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा कहेगा काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तू तो बड़ा ही बुरा साथी है, और जबकि तुम जालिम ठहर चुके हैं तो तुम्हें आज हरगिज तुम सब का अजाब में शरीक होना कोई नफा ना देगा। क्या बस तू बहरों को सुना सकता है या अंधे को राह दिखा सकता है, और इसे जो खुली गुमराही में हो, बस अगर हम तुझे यहाँ से ले जाएं तो भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं, यानी आप सर पे रहे ना रहे हम इनसे खुद ही हिसाब ले लेंगे, या जो कुछ इनसे वादा किया है वो तुझे दिखा दें, हम इन पर भी कुदरत रखते हैं, बस जो वही आपकी तरफ की गई है इसे मजबूत थामे रहे। हाईलाइट करें, आपने शायद काउंट किया है कि नहीं कि कितनी दफा इस बारे में वही इलाही का लफ्ज है। दुआ करे अल्लाह हम इस वही को अपनी कुचलियों से थाम लें, और यकीनन ये खुद आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है, और अन करीब तुम लोग पूछे जाओगे, और हमारे इन नबियों से पूछो जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था, क्या हमने सिवाय रहमान के और माबूद मुकर्रर किए थे जिनकी इबादत की जाए, यानी किसी नबी के दौर में शिर्क जायज था? नहीं जायज था, क्योंकि वही इलाही का सोर्स एक है ना, तो उसका एंड तक सिरा वैसे ही चलेगा। तो क्या पता चला, फेथ इन एक्शन, जिंदगी के हर काम में अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत करनी है ताकि शैतान के तसल्लुत से बचा जाए, राह रास्त पर कायम रहने के लिए हर काम कुरान की हिदायत के मुताबिक करना है। आते आप देखिए कि जो लोग कुरान का इनकार करते हैं ना, खुले जिस्म पे कुरान की आयतें लिखवा कर औरतों ने मार्च किया कि तुम हमें क्यों सताते हो, क्या हम अपने आप को छुपाएं? वही आयतें कुरान की जो हिजाब और लिबास और औरत के पर्दे के वो नंगे जिस्म पे लिखा के ना तो घूमी फिरी, ये सरकशी नहीं, ये फिरौनियत नहीं है, ये हामान के पीछे छोड़े हुए सारे बीज नहीं है। तो इस कुरान को आम कीजिए, आपको तो खुशी से भूले नहीं समाना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इस कलाम के लिए चुना है जिसके लिए आप बैठे हुए हैं। अल्लाह हमें इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आगे जी फिरौन का तकबर, 46 से 56, रुकू नंबर 5, वलकद अरसलना मूसा भी आयातिना इला फिरौन व मलाईही, और हमने मूसा अलैहि सलाम को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा, तो मूसा अलैहि सलाम ने जाकर कहा मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। खूबसूरत तारुफ, टू दी पॉइंट। बस जब वो हमारी निशानियां लेकर इनके पास आए तो वो बेसाख्ता इन पर हंसने लगे। अगर आज आप पे कोई हंसता है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, और हम इन्हें जो निशानी दिखाते थे वो दूसरी से बड़ी चढ़ी हुई होती थी, और हमने इन्हें अजाब में पकड़ा ताकि वो बाज आ जाएं, और उन्होंने कहा ऐ जादूगर हमारे लिए अपने रब से इसकी दुआ कर जिसका उसने तुझसे वादा कर रखा है, यकीन मान के हम राह पर लग जाएंगे। इससे ज्यादा कोई किसी का मजाक उड़ा सकता है? आप जाए बड़े धड़ल्ले से दर्श देने, तैयार श्यार होके बैग उठाकर आप गई, और वहां जाकर आपको ये बातें मिली। आपको तो कि यहाँ बैठने लोगों को कितनी बातें सुननी पड़ती है, ये जान ले ना कितनी बातें सुननी लगती है वो यहाँ कभी ना बैठे। नबियों ने तो बेचारों ने पूरी पूरी जिंदगियां वक्फ कर दी थी, फिर जब हमने वो अजाब इनसे हटा लिया उन्होंने इसी वक्त अपना कौलो करार तोड़ दिया, और फिर उन्होंने अपनी कौम में मुनादी कराई यानी ऐलान, और कहे मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं? देखिए इसका छिछोरपन, और मेरे महल्लों के नीचे से ये नहरें बह रही हैं क्या तुम देखते नहीं, ये फ्लॉन्ट कर रहे हैं। यदि अगर आप देखें ना तो फिरौन बात यहाँ एकदम क्यों आई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो कौम थी ना, वो भी आपके साथ कुछ कम नहीं कर रही थी। अगर थोड़ा सा तकाबुल करें, कौम मूसा यानी हजरत मूसा का जिस कौम से मुकाबला था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला जिस कौम कुरैश से था, तो आप देखिए कि बनी इसराइल को फिरौन से मूसा के जरिए निजात मिली, मगर कौम ने हजरत मूसा की कदर ना की। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अरब के मुशरिकों को अल्लाह ने इज्जत दी, खैर दी, लेकिन कौम ने अल्लाह के नबी की कदर ना की। फिरौन और उसकी कौम ने हजरत मूसा के पैगाम और मौजज़ों का मजाक उड़ाया। कुरैश मक्का ने अल्लाह के नबी की नबूवत और कुरान का मजाक उड़ाया, और आज तक उड़ा रहे हैं लोग। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी शान और शौकत की वजह से हकीर जाना। सरदाराने कुरैश ने अपनी सरदारी के जोम में अल्लाह के नबी को हकीर जाना। तो आज भी जो भी दीन और इस्लाम और कुरान को बुरा भला कहेगा ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं किब्र और तकब्बुर है। क्या कहता है वो? अब जरा इसकी मजीद शोबाजियां सुनिए। हजरत मूसा को कैसे कैसे ताने दे रहा है। क्या मैं बेहतर नहीं हूँ बनिस्बत इसके जो बेतौकीर है और साफ बोल भी नहीं सकता? हजरत मूसा की जुबान में लुकनत थी, उसका ताना दे रहा है। अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं आ पड़े? और या इसके साथ पर बांधे हुए फरिश्ते ही आ जाते? यानी ये देखिए जरा, हजरत मूसा ने कब ये दावे किए थे कि मैं इतना अमीर हूं कि मेरे ऊपर सोने के कंगन बरसते हैं? सिर्फ लट डाउन करना। आज जो लफ्ज मौलवी है ना, वो भी इसी की बात है। कभी किसी को ऐसे लफ्जों के साथ मजाक ना करें। ओ जी, बड़े मौलवी लग रहे हो, मुलानी लग रहे हो। ये असल में दीन को बदनाम करने का जरिया होता है कि दीन कहने वाले को बदनाम कर दो। बस इसने अपनी कौम को बहलाया, फुसलाया, और उन्होंने इसी की मान ली। अक्सर कौमें ऐसे ही होती हैं बेचारियां। यकीनन ये सब ही नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, इसको हाईलाइट करिए, अल्लाह को गुस्सा आता है कुरान जलते देखकर, नबी की बात पे बात करते देखकर, तो फिर क्या हुआ? हमने इंतकाम लिया और सबको डबो दिया। बस हमने इन्हें गया गुजरा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दिया। तो क्या पर मैं इस वही इलाही पे अमल करके इतना मजाक उड़वाने के लिए तैयार है? हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। फेथ इन एक्शन, बहसियत कौम अपनी इसलाह करनी है, वरना अल्लाह तआला के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। पिछली कौमों जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी, नेमत मिलने पर अल्लाह तआला की नाफरमानी नहीं करनी। आगे रुकू नंबर 657 से 67। अब सूरत अपने ततिम्मे की तरफ, एंड की तरफ है, और अब अल्लाह के नबी की तरफ इशारा आएगा। इसमें मुशरिकीने मक्का के एतराजात के जवाब। वलम्मा दुरिबत्नु मरियम मसलन इदा कौमुक मिन्हु यसिद्दून। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई, तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगती है, और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो? तुझसे इनका कहना महज झगड़े की गरज से है, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। ईसा अलैहि सलाम भी सिर्फ बंदा ही है जिस पर हमने एहसान किया और इसे बनी इसराइल के लिए निशाने कुदरत बनाया, और अगर हम चाहते तो तुम्हारे बस फरिश्ते पैदा कर देते जो जमीन में जानशीनी करते। और यकीनन ईसा अलैहि सलाम क्यामत की निशानी है। कितना वाज़े इशारा है, इसको नोट करना चाहे तो कर ले। बस तुम क्यामत के बारे में शक ना करो और मेरी ताबेदारी करो, यही सीधी राह है, और शैतान तुम्हें रोक ना दे। यकीनन वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है, यानी खुल्ला। और जब ईसा अलैहि सलाम मौजज़े लाए तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि जिन बास चीज़ों में तुम मुख्तलिफ हो इन्हें वाजे कर दूँ। बस तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरा कहा मानो, और मेरा और तुम्हारा रब फक्त अल्लाह ताला ही है। बस तुम सब इसकी इबादत करो, और आहे रास यही है। फिर बनी इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तलाफ किया, बस जालिमों के लिए खराबी है दुख वाले दिन की आफत से। यानी ऑलमोस्ट हर नबी को एक ही किस्म के हालात पेश आए। ये लोग सिर्फ कयामत के मुंतजर हैं कि वो अचानक इन पर आ पड़े और इन्हें खबर भी ना हो। क्या होगा? जरा सब अपनी फ्रेंड्स को जहन में लाइए। अल्लाह ताला सब दोस्तियों को दीन पे कायम रखे और एक दूसरे के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी फायदे के हों। फरमाए इस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती वो जो तकवा की बुनियादों पे हो। फेथ इन एक्शन क्या है कि दुनिया में बुरे कामों के साथी قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، جبکہ نیک اعمال والے ساتھی آخرت میں بھی دوست ہوں گے، تو کیا کریں؟ اپنی دوستوں کو بھی نیکیوں کی دعوت دیں، کیونکہ ہم صرف شکوے کرتے ہیں لیکن ہم علاج نہیں کرتے۔ تو آگے رکو نمبر 7، 68 سے 89، دو کردار دو انجام۔ یا عبادی لا خوفن علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، میرے بندو آج تم پر نہ تو کوئی خوف اور نہ تم غم زدہ ہو گئے، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ یہ پکار ہمیں سب کو سنوا دے۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ دنیا میں سونے کے برتنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ اللہ جنت میں شوق پورے کر دے گا آپ کے۔ کون کون گولڈ کے برتن لے گا جنت میں؟ سبھی لیں گے ماشاءاللہ۔ اور کیا ہوگا؟ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی ہے وہ بہشت کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گناہگار لوگ عذابِ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی میں مایوس رہیں گے پڑے ہوئے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ اب ذرا نوٹ کریے، ویژولائز کریں، کچھ لوگ جہنم کے تنور میں تپ رہے ہیں، اور دنیا کی آگ نہیں، 69 ٹائم زیادہ اس دنیا سے، اور پکار پکار کر کہیں گے اے مالک، یہ کون ہے؟ گارڈ مین آف ہیل، جہنم کا داروغہ، چوکیدار، سیفٹی مین، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہمیں موت مل جائے۔ ہم جی جی کے تھک گئے ہیں، ایسی زندگی سے تو موت بہتر۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگرمیوں کو نہیں سن سکتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ کون؟ کرامن کاتبین۔ آپ کہہ دیجئے، اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث اور مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پیش آ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کے مستحق تو وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً جواب دیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں؟ اور ان کے پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، انہیں ان قریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ ہو، بالکل متارکہ، ختم ہونے والی باتیں ہیں۔ جب بحث مباحث سے حد سے زیادہ بڑھ جائے نا تو سلام کر لینا چاہیے، پھر نئے راستے دیکھیے، نئے لوگ ڈھونڈیے، بہت کسی کے پیچھے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دو آیات ہیں ایمان سے متعلق، اس میں 69 زہرف، ایمان اور تسلیم جنت کی ضمانت، یعنی آج آپ ایمان لانے کے بعد تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا۔ 88 زخرف، لوگوں کی خیر خواہی کر کے ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیں، پیچھے نہ پڑیں۔ فیتھ ان ایکشن، جنت صرف خواہشات اور دعاؤں سے نہیں नेक अमल से मिलती है। अल्लाह ताला आपको मुझे अच्छे अमल करने वाला बना दे। अब याद रहेगा इखलास, इत्तबाए सुन्ना और कामों को मुकम्मल करना। जो गुमराह हो जाता है अल्लाह इसे मजीद भटकने के लिए इसके हाल पे छोड़ देता है। दुनिया में हक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुश्किल, लेकिन ये हमें आखरत की मुश्किलों से बचाकर हक दिलाएगा। अल्लाह ताला हमसे काम ले ले। तो एक और खूबसूरत सूरत पूरी हुई, पूरी सूरत जोहरफ में अगर आपने नोट किया हो तो औरतों से मुतल्लिक बहुत सारी बातें थी, क्योंकि उनकी बहुत सारी देवियां जो थी वो फेमिनिन टाइप की थी।